लिखेंगे और कंपोज भी करेंगे.
क्या बात है,
ठीक है.
वाओ, वंडरफुल वंडरफुल स्टोरी. यस,
बहुत एक बहुत टची स्टोरी जो इसके साथ मुझे लगती है. अच्छा, जिस गाने की मैं बात कर रहा हूँ, तेरे बिन जी नहीं लगता मेरा ढोलना, आपने ये कई दफा सुना होगा. राहत फतेह अली खान साहब ने इसको गाया, ठीक है. सबसे पहले ये एल्बम आया था, सौरव एल्बम आया था खान साहब का 1996 में. और फिर एक जावेद अख्तर लिरिक्स थे इंडिया के, उन्होंने भी इस गाने को लिखा दोबारा संगम के हवाले से. संगम एल्बम रिलीज होता है इंडिया में और उसकी तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा कॉपीज जो है सोल्ड आउट हुई थी. और उसी एल्बम में जो है आफरीन आफरीन गाना भी मौजूद था, वो भी हम प्रोग्राम के बाद में जो है हम आपको बताएंगे. अच्छा, तेरे बिन दिल नहीं लगता कच्चे धागे में रिलीज हुआ, ऑडियो एल्बम में रिलीज हो गया दो दफा. ब्रिटिश कैनेडियन प्रोड्यूसर है बाली सागो, उन्होंने भी इस गाने को रिमिक्स किया. और फिर वो 2002 में एक ब्रिटिश मूवी बनती है बैंडेड लाइक अ बेकहम, उसमें भी जो है इस गाने को शामिल किया गया.
सही.
अच्छा, प्रोग्राम कर रहे हैं हम खान साहब के, लेकिन मैं माजरे के साथ लोगों से कह रहा हूँ कि ये जो हम गाना सुनाने लगे हैं ये है लता मंगेशकर की आवाज में.
लता मंगेशकर जी की आवाज.
म्यूजिक है नन अनदर खान साहब. तो आइए सुनते हैं और देखते हैं. जी कैसा लगा? अमेजिंग.
नेवर हर्ड इट बिफोर.
बिल्कुल नया टच था.
नया टच.
तो मैं जान करके जो है मैंने कहा कि ये गाना मुझे इंक्लूड करना चाहिए.
सही.
ताकि एक वेरिएशन जो है हमें पता चले.
मगर ये म्यूजिक तो फिर आफ्टर ऑल उस्ताद नुसरत
फतेह अली खान की थी. जी. अच्छा, हम बात कर रहे थे एक कच्चे धागे की जो मूवी थी इंडिया की, उसमें खान साहब ने म्यूजिक दिया. पाकिस्तान की एक फिल्म बनी थी पल दो पल.
अच्छा.
वो भी 1999 में बनी थी मूवी, वही 2 साल के बाद का अरसा था. ये कच्चे धागे जो है 19 फरवरी को रिलीज होती है और ये पल दो पल जो है May 7 को रिलीज होती है. तो अच्छा, पल दो पल वही फिल्म रही जिसमें खान साहब ने म्यूजिक दिया, ठीक है ना?
मींस कंप्लीट म्यूजिक.
कंप्लीट म्यूजिक दिया.
सही.
लेकिन एक सेड पार्ट बताऊं मैं इस मूवी के हवाले से. उस वक्त ये फिल्म सिर्फ 4 दिन तक सिनेमाघरों में रही.
ओहो.
तो बिल्कुल सेट पार्टी, यानी कि इतना अच्छा कंपोजर, म्यूजिक, गाने वाले, उसमें तहसीन जावेद हैं, शाहजहां मंजूर हैं और खुद खान साहब ने भी गाना गाया. तो एक थोड़ा सा सेट पार्ट में बताने लगा था, लेकिन ये कि नो डाउट खान साहब ने जो अच्छा उसमें काम किया, उसकी म्यूजिक दी, लिरिक्स वगैरह भी उस पर भी काम किया, धुन बनाए. तो एक गाना हम देखने लगे हैं इश्क रुतबा. तो आइए देखते हैं और सुनते हैं.
इश्क का रुतबा इश्क ही जाने, इश्क का रुतबा इश्क ही जाने. समझ सके ना लोग जाने, इश्क का रुतबा इश्क ही जाने, इश्क का रुतबा इश्क ही जाने. इस दुनिया का खेल रचाया इश्क की खातिर आप बुलाने, इश्क का रुतबा इश्क ही जाने, इश्क का रुतबा इश्क ही जाने. रात में दिल वाले जल गए शौक से जब आग लगा दी इश्क ने
जी।
अच्छा महेश भाई मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, ये जो पल दो पल फिल्म का आपने गाना सुना देखा ये रिलीज हुई थी 5 नवंबर 1999 में ठीक है, और इसी साल May 7 को कारतूस फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें संजय दत्त ने मरकजी किरदार अदा किया था, तो उस फिल्म में भी ये गाना था इश्ता रुतबा। तो ये थोड़ी सी करेक्शन जो है मैं अपने नाजरीन सामईन को बताना चाहता। अच्छा प्रोग्राम से पहले मैंने आपसे एक बात छेड़ी थी रेड हॉट चिली पेपर्स का, आपने अगर नाम सुना।
हाँ ऑफ कोर्स।
अच्छा उनका एक बैंड है, उनके जो लीड सिंगर थे उस वक्त उन्होंने एक धुन बनाई थी जो रिलीज नहीं हुई थी, बाद में रिलीज हुई थी, और उस धुन का गाने का टाइटल था सर्कल ऑफ न्यूज, और ये उन्होंने रिकॉर्ड किया था 1998 में। और माय बैड देखें 1998 में उन्होंने ये रिकॉर्ड किया था और 2016 में वो लीक हुई थी इंटरनेट पे। यानी कि देख कितना इतने अरसे के बाद जो है ये रिलीज हुआ था इंटरनेट पर मंजर आम पे। तो उनके उस वक्त के जो लीड सिंगर थे डेव नेरावो उन्होंने कहा कि ये मैं ट्रिब्यूट पेश करता हूँ खान साहब को,
ठीक है,
और ये जो उन्होंने धुन ली थी वो 60s और 90s यानी कि एक 30 साल का 3 देके का जो एक म्यूजिकल जर्नी थी, चाहे वो वेस्टर्न हो या क्लासिकल हो, उस धुन को लेकर और नुसरत फतेह अली खान साहब को उन्होंने अपने सामने रखकर ये धुन बनाई थी। तो वो हम शामिल नहीं कर रहे, लेकिन एक बहुत मकबूल गीत रहा है खान साहब का प्यारे प्यारे, तो आइए वो सुनते हैं और देखते हैं।
आप इंजॉय तो कर रहे हैं मगर टाइम की कमी की वजह से हम पूरे पूरे गाने आपको ना सुना सकेंगे, मगर फिर इंशाल्लाह हमारे डिफरेंट प्रोग्रामों में आप ये सुन सकेंगे। जी दिशान।
अच्छा आपने कोक स्टूडियो का हम जिक्र कर रहे थे, उसमें राहत फतेह अली खान की बहुत मकबूल गाना आफरीन आफरीन, ठीक है ना, तो हम इसका ओरिजिनल वर्जन सुनते हैं, और ये उसी एल्बम में था जिसमें जावेद अख्तर का संगम एल्बम रिलीज हुआ था 1996 में। आइए सुनते हैं और देखते हैं। आफरीन आफरीन। अच्छा भाई भाई नुसरत फतेह अली खान साहब को ये क्रेडिट भी जाता है कि उनकी यानी कि डेथ के बाद भी जो उनके म्यूजिक मद्दाह दुनिया भर में उनके गाने सुनते हैं या देखते हैं, कवाली हो चाहे क्लासिकल हो, फोक सॉन्ग हो, ये रिमिक्स हो या ये पॉप वर्जन हो, उनका क्रेडिट जो है आज तक नुसरत फतेह अली खान को मिलता है पूरी दुनिया भर में। ऑनलाइन जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज आ गई आजकल, तो एक बड़ा प्राउड मोमेंट हमारे लिए, तो उसका क्रेडिट जाता है सुनने वालों को, क्योंकि खान साहब ने पूरे वर्ल्ड वाइड टूर किया और वर्ल्ड वाइड जो म्यूजिक एजेंसीज होती थी उनके साथ उन्होंने معاہدے کیے ہوئے تھے, کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے تھے, تو ابھی تک جو ہے خان صاحب اس کا جو ہے فیئر شیئر لیتے ہیں, کریڈٹ ان کو ملتا ہے.
تو یہ ایک
اچھی بات ہے ہمارے آرٹسٹ کے لیے. جیسا ہم نے بات کی تھی کہ پاپ کو جو ہے انہوں نے یعنی قوالی کو کلاسیکل کو انہوں نے پاپ کا رنگ دیا اور غزل کو بھی پاپ کا دیا. تو ایک ان کی بہت مشہور گیت کہوں گا یا غزل کہوں گا گانا کہوں گا, تیرا دل رباسا چہرہ, مجھے بہت پسند ہے. تو میرے خیال سے آپ بھی سنیں گے تو انجوائے کریں. آئیے سنتے ہیں, دیکھتے ہیں.
تیرا دل ڈوبا سا چہرہ, میرے دل کو بھا گیا, تیرا دل ڈوبا سا چہرہ, میرے دل کو بھا گیا, تیری زلفوں میں رنگت شام تھی, تیری آنکھوں میں مستی جام تھی, تجھے دیکھا چاہا جانا مانا, تیرا دل ڈوبا سا چہرہ, میرے دل کو بھا گیا, تیرا دل ڈوبا سا چہرہ, میرے دل کو بھا گیا, تیری زلفوں میں رنگت شام تھی, تیری آنکھوں میں مستی جام تھی, تجھے دیکھا چاہا جانا مانا, تیرا دل ڈوبا سا چہرہ, میرے دل کو بھا گیا, تیرا دل ڈوبا سا چہرہ. سارے گا گا گلا گارے گا گا گلا گارے گا گا گلا گارے گارے رے دا گا ما دا ما دا نی ما دا نی دا نی دا نی نی دا لا ما ما گا سارے گا رے سارے گا رے دا نی.
جی مہی بھائی, آپ کا کنسرن تھا کہ پاپ میوزک میں خان صاحب
تو ایگزیکٹلی
دور ہو گئی,
وہ دور ہو گیا,
دور ہو گیا,
ہاں وہ دور ہو گیا.
دیکھیں ہم نے بہت ساری اور ان کے گانے ہیں, کلام سسے ہیں جو پاپ کی انہوں نے شکل دی, جو بالی ووڈ کے لیے, ہالی ووڈ کے لیے, پاکستانی میوزک انڈسٹریز میں انہوں نے گایا, ان کی جو کنٹریبیوشن رہی اس پہ جو ہم آورز گھنٹوں ہم پروگرام کر سکتے ہیں, سینکڑوں ایسے مہی بھائی گانے, قوالیاں, کلام ایسے ہیں کہ ہم وہ لگا سکتے ہیں اور ہمارا ٹائم جو ہے کبھی ختم نہیں ہوگا. تھوڑی سی اچھا, جو پاکستان سے لندن جا رہے تھے, لیور اور کڈنی کی ان کو جو ڈیزیز تھی, تو ایئرپورٹ پہ جو ہے ان کو کارڈیک اٹیک ہوتا ہے اور وہ لندن کے ایک ہسپتال میں جو ہے کرومویل ہسپتال میں, وہاں جو ہے 16 اگست 1997 کو رخصت ہوگا. تو 14 اگست کے بعد 15 اگست اور 16 اگست کو جو ہے ہر سال خان صاحب کی برسی منائی جاتی ہے. اچھا ان کے جو اہلیہ تھیں ناہید نصرت, وہ ان کے انتقال کے بعد جو ہے کینیڈا موو ہو گئی تھی, اور سپٹمبر 2013 میں ان کا انتقال یہی مسساگا میں ہوا تھا. تو خان صاحب نے جو لیگیسی تھی ان کی, خان صاحب یعنی نصرت فتح خان صاحب کی جو لیگیسی ہے, اب ان کے جو نیفیو ہیں راحت فتح علی خان صاحب اور رضوان معظم, وہ جو ہے اس لیگیسی کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں. ایک آخری میں ان کی گلی میں آنا جانا عادت سے ایک ہو گئی ہے, وہی کلاس غزل شاعری لیکن دھن جو ہے ویسٹرن اور پاپ. تو آئیے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں, اور
اس کے ساتھ ہی اب ہم اجازت چاہیں گے آپ سے, اور اگلا پروگرام دیکھنا نہ بھولیے, وہ بھی جناب حیدر مہدی صاحب کے ساتھ کا پروگرام ہے. اور کون کون ہے اس کے اندر؟
جی اقبال ملاڈ والا اور حیدر مہدی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کرتے ہیں اینالس, تو وہ آپ سن سکیں گے ابھی ریڈیو پر,
ریڈیو پہ سن سکیں گے اور ٹی وی پہ دیکھ سکیں گے.
جی جی
ہو گئی ہے, دیکھ
आप सुन रहे हैं रेडियो साज आवाज ब्रॉडकास्टिंग सर्विस 24/7। हमारी रेडियो और टीवी की सर्विस के लिए विजिट कीजिए eawaz.com या फिर आज ही eawaz ऑफिशियल ऐप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कीजिए। और अब वक्त हुआ चाहता है खूबसूरत और मालूमती प्रोग्राम का जो eawaz टीवी के लिए रिकॉर्ड किया गया। eawaz टीवी को आप तमाम IPTV बॉक्सेस पर देख सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक, वेलकम रादर नॉट बैक टू एनालिसिस। मेरे साथ हमारे दोस्त, मेरे साथी रजा भी हमारे साथ है।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह। और आज तो पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन क्या बताया, अभी हमें कब सुकून और कब चैन मिलेगा ये हमें नहीं पता। लेकिन उससे पहले कि हम शुरू करें कुछ आज के हालात पे, उससे पहले कुछ दो चार चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम तो बहुत बड़ा है कि सुल्तान भी है, सिकंदर भी है, राजा भी है। ना वो सिकंदर है, ना राजा है, ना वो सुल्तान है, ना वो जज है, ना वो ज्यूरी है। उनको बाज आ जाना चाहिए, वो बेवकूफ़ वाली हरकतें कर रहे हैं डिस्क्वालीफाई करने के लिए, और ये नहीं चलेगी बातें। उस इडियट्स को ये नहीं पता कि जब कोई रेमिटेंस होती है किसी अकाउंट से, अगर ज्वाइंट अकाउंट है हस्बैंड एंड वाइफ का, तो बैंक दोनों का नाम डालेगी। मैं बैंकर रह चुका हूं, मुझे पता है। हालांकि बीवी का कुछ ना हो हिस्सा उस अकाउंट में, एक कौड़ी नहीं डाली हो बीवी ने, लेकिन नाम दोनों का आएगा। तो वो इंडियन जो खातून, इंडियन ओरिजिन खातून, इंडियन नेशनल भी नहीं है वो, बहुत फर्क है। इंडिया ड्यूअल नेशनलिटी अलाउ नहीं करता जैसे पाकिस्तान अलाउ करता है। और उन्होंने कहा इंडियन से फंडिंग ली, इंडियन से फंडिंग नहीं ली, सारे पाकिस्तानियों ने फंडिंग दी। जी, किसी ने कंपनी के थ्रू दी, मैं भी शामिल हूं उसमें, दुबई में मैं भी था जब आरिफ नकवी ने हमें जमा किया था। 50 लोगों को, बिजनेसमैन थे, बहुत सारे सीनियर प्रोफेशनल्स थे, सबने कंट्रीब्यूट किया था। हमारा कोई ताल्लुक नहीं फॉरेन कंट्री, फॉरेन, हम तो सिर्फ एक चीज को सपोर्ट कर रहे थे कि गुड कॉज। तो ये इनकी जो है कि ये फॉरेन फंडिंग है और ममनू फंडिंग और पता नहीं क्या अजीब अजीब रोज एक नई चीज कहते, तो ये दे शुड स्टॉप। और आरिफ नकवी से बड़ा महबे वतन पाकिस्तानी मुझे मिलाने, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मैं उसको 20 साल से ज्यादा से जानता हूं। यानी उसने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया। आरिफ नकवी ने हर जो कदम उठाया वो पाकिस्तान के फायदे के लिए उठाया। आरिफ नकवी ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ कोई चीज नहीं की। आरिफ नकवी तो एक वो कहते हैं विक्टिम है, ये अमेरिकन इंडियन ज्यूइश लॉबी का विक्टिम है वो। अमेरिका नहीं चाहता था कि इलेक्ट्रिक ट्रांसफर हो चाइनीज के, तो बस उसको बना दिया उन्होंने बकरा, जैसे आगसन आबदी को बनाया। आरिफ नकवी का कोई कसूर नहीं है, बहुत ही शरीफ ईमानदार इंसान है वो। अब वो $20 मिलियन उसने इनको भी दिए, शरीफ बरादान को भी दिए, वो कहां गए? वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उसका जिक्र किया, उसका कोई, उसकी कोई बात नहीं कर रहा, कहीं जिक्र नहीं है उसका। अब मुल्ला डीजल को लीबिया ने पैसे दिए, क्या हुआ उसका? किसी ने कुछ पूछा है? वो तो बल्कि बोल उसके दरवाजे पे लगा हुआ है कि ये लीबिया ने हमें पैसे दिए, वो उस पर क्यों नहीं सवाल उठता है? अब ये हमारी जो हुकूमत है उसको परेशानी है। एक तो इमरान खान की बढ़ती जो उभरती जो पॉपुलरिटी है उससे डर गया ये। अब क्या होगा, अब इनकी जो स्ट्रिंग्स है वो ऊपर पपेटियर बैठा हुआ है, उसको मैं कहूंगा बिग बी। बिग बी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन को कहते हैं, हम पाकिस्तान में, आपको पता है मैं किसके बारे में कह रहा हूं। तो बिग बी जो है वो इनको नचा रहा है, ये कठपुतलियों को, और ये कर रहे हैं जो वो चाहता है। अब बिग बी के क्या इरादे, मैं अपने दोस्त से पूछूंगा। हाँ भाई, रजा भाई बताइए क्या इरादे बिग बी
सामने का। इकबाल, थैंक यू वेरी मच। इकबाल, इसको ना मैं एक कॉन्टेक्स्ट में इस तरह देख रहा हूं कि देर इज ए बड़ा एक क्लियर इंडिकेशन हमें मिल रही है पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हो रहे हैं पिछले 2-3 दिन में, कि एक क्रैकडाउन इनएविटेबल है।
हाँ, वो नजर आ रहा है
जो कि फैसला कर लिया है जनरल बाजवा ने, कि जो हमने पहले भी बात की थी, मैंने भी कही थी कि बैटल लाइंस आर ड्रॉन। फौज में हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं एडवांस टू कॉन्टैक्ट, वो ये होती है कि फौजें जो है ना वो आगे बढ़नी शुरू हो जाती हैं और दुश्मन के साथ वो कॉन्टैक्ट करती हैं। तो जनरल बाजवा और की एक साइड पे जनरल बाजवा है, ये PDM की हुकूमत है लुटेरों की और कोएर्सिव पावर ऑफ द स्टेट है, दूसरी तरफ इमरान है और द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये दो अपोजिंग फोर्सेस हैं। जनरल बाजवा ने फैसला कर लिया है कि उसने इनएविटेबल अब कॉन्फ्रंटेशन करनी है, बिकॉज वो ये समझ
मकसद
रहे हैं,
क्या है
मैं इसको इसीलिए मैं आपको कंप्लीट कर रहा हूं कि क्रैकडाउन उन्होंने करना है कि किसी तरीके से इमरान को वापस नहीं आने देना चाहिए, जो पुरानी
तो
बात
तो
कर
सब
रहे
हाँ जानते
जी। तो वो अब जो क्रैकडाउन है ना, वी हैव टू नाउ फॉलो द इवेंट्स, वो अब क्रैकडाउन जो है उसके स्टेप्स हो रहे हैं। शहबाज गिल को पकड़ लिया, एआरवाई को सारे कंटोनमेंट्स में से जितने हैं उधर से उसको बैन कर दिया, और जो मेरे लिए एक बहुत ही क्वेश्चनेबल है कि ये इतनी मेजर जो ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स हुई है पाकिस्तान आर्मी में, फैज को हटा के दूसरी कोर में दे दिया, तालिबान स्वात में नजर आने शुरू हो गए हैं, स्वात के अंदर नजर आने,
लेकिन उसकी वजूहत है ना भाई।
सो लेट मी जस्ट कंक्लूड दिस। सो ये जो आपने सारी बात की है ना फॉरेन फंडिंग की, दिस इज पार्ट ऑफ दैट सेम इनएविटेबल कॉन्फ्रंटेशन विच बाजवा हैज डिसाइडेड टू अंडरटेक कि किसी तरीके से इमरान को वापस आया जाए, चाहे झूठा चाहे सच्चा, चाहे 20 मिलियन आरिफ नकवी ने रिश्वत दी हो नवाज शरीफ को, चाहे नवाज शरीफ ने 10 मिलियन डॉलर ओसामा बिन लादेन से लिए हो, चाहे मुल्ला ये डीजल ने लिबिया से फंडिंग लेके अपनी की हो, चाहे 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की हो शहबाज शरीफ ने, चाहे 32 बिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की हो जरदारी ने, जिसके बाय द वे सारे केसेस की फाइल्स जो है ना वो गायब हो गए,
गायब हो गए, ऑफ कोर्स वो तो होनी थी।
तो दिस इज द स्टार्ट इन पाकिस्तान ऑफ एन अटेम्प्ट बाय जनरल बाजवा एंड द फोर्सेज, जो उसने अपने सामने एक
लेकिन सर माजरत के साथ
मैं कंप्लीट कर लूं
जी जल्दी से
जी जल्दी से, उन्होंने जो ये फोर्सेज अपने सामने मार्शल की है ना, वो एक फैसिस्ट और टोटलिटेरियन स्टेट की तरफ हमें लेके जा रही है, ठीक है ना। तो हमें बात अब ये करनी है कि ये जो इनएविटेबल कॉन्फ्रंटेशन होगी ना, इसका नतीजा क्या निकला। मैं एक लफ्ज कह के फिर आपके हवाले करता हूं, अगर तो जनरल बाजवा को फौज के अंदर से किसी जर्नैल ने नहीं निकाला, और मेरा ख्याल है बहुत प्रेशर होगा, और ये जो इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग्स इनिशियल की हैं ये उसी का एक हिस्सा है, अच्छे अच्छे जर्नैलों को खुडे लाइन लगाया है,
जी जी,
फैज की बात नहीं कर रहा औरों की बात कर रहा हूं। और अगर वो ना हुआ और अगर ये इनएविटेबल कॉन्फ्रंटेशन होगी ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पाकिस्तान, और अगर पाकिस्तानी लोग निकल आए और गोली खाने के लिए तैयार हो गए और सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार हो गए, तो ये जीत फिर पाकिस्तानी अवाम की होगी। लेकिन अगर लोग नहीं निकले, गोली खाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो ये कोर्सिव पावर ऑफ स्टेट इतनी ज्यादा है और ये इन्फ्लेशन का दबाव इतना ज्यादा है कि ये जो पूरा इमरान ने एक बिल्ड किया हुआ है ना
मोमेंटम
ये बैठ जाएगा।
लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैंने क्यों याद दिलाया इमाम हुसैन की जो है एफर्ट जो थी, और आपको इस पे एक मुझे याद आया कि आई थिंक आइंस्टाइन ने कहा था कि अ फूल विल कीप ऑन रिपीटिंग द सेम एक्सपेरिमेंट इन स्पाइट ऑफ द फेलियर्स होपिंग टू गेट अ न्यू रिजल्ट, ओनली फूल्स विल डू दैट। तो ये आर्मी वही हरकत कर रही है जो हो चुकी है हमारे माजी में, और वही मिस्टेक्स दोबारा रिपीट हो रही, और इनको याद रखना चाहिए ईरान में क्या हुआ था बिफोर प्रायर टू खोमेनी, जब शाह के खिलाफ लोग उठे तो वहां पर कोई भाई शाह ऑफ ईरान को सपोर्ट था, अमेरिका का, यूरोप का, सारी दुनिया का सपोर्ट था, और अरबों का भी था, सारे अरब स्टेट्स उनके सपोर्ट में। क्या हुआ जब पब्लिक उठ गई उनके खिलाफ, कोई नहीं बचा सका शाह को, ना आर्मी बचा सकी, ना उसकी पुलिस बचा सकी, कोई नहीं बचा सका, वो फाइनली ही हैड टू लीव, और क्या हुआ, कौन सी मौत मरा बेचारा जाके।
इकबाल साहब आपने वही बात की जो जिसपे मैंने आपको कहा था, इफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर विलिंग टू कम आउट इन द सेम मैनर एज द इरानियंस डिड, ईरानियंस पीसफुली निकले थे
जी,
हथियार लेके नहीं निकले,
नहीं, कोई नहीं,
आपको याद है फूल लेके निकले थे
जी,
तो जहां वो उनको नजर आते थे फौजी सिपाही या पुलिस के, वो उनकी बैरल के अंदर फूल
जी,
लेकिन फिर भी 1,00,000 आदमी मारा गया।
हाँ,
कंजर्वेटिव एस्टिमेट है 50,000, اور ذرا جو جو کہتے ہیں ذرا ایکسٹینڈڈ ایسٹیمیٹس ہیں وہ ہے 50,000 سے 1,00,000 آدمی اور زیادہ تر بچے اور عورتیں اینڈ یو نو اولڈ مین جو کہ باہر آئے تھے نہتے
جی جی
جس طرح 25 مئی کو پاکستانی نکلے دیکھنا یہ ہے اور میں کوئی اس قسم کی آئی ایم ناٹ انسٹیگیٹنگ دا پیپل آف پاکستان ٹوورڈز
نو وی ڈونٹ نیڈ ٹو انسٹیگیٹ دے آر اویئر
میں یہ
جاگ اٹھے
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بہت ریئر ہوتا ہے کہ آپ کو آزادی جو ہے آرام سے ملتی ہے پاکستان بائی دا وے از ون آف دوز کنٹریز دا ریئر ایکسیپشنز ٹو دا رول جس میں قائد اعظم نے تشتری پہ آپ کو ایک ملک بنا کے دیا کہ یہ میں نے آپ کے لیے ملک بنایا ورنہ ہر ملک کو اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑنی
اور قربانیاں دینی ہوتی
قربانی اگر یہ قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں تو ہم جیت جائیں گے اگر ہم قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم نہ جو تھوڑے بہت لوگ نکلے مار پٹائی ہوئی گھر چلے گئے پھر نکلے مار پٹائی ہوئی گھر چلے گئے بیکاز کوئرسو پاور آف اسٹیٹ بہت آپ سوچیں اتنی پاورفل اسٹیٹ ہے کہ جنرل باجوا پورا کنٹرول ہے اس کا سیویلین میں بھی اور ملٹری ایڈمنسٹریشن پہ ہی کین ڈو اینی تھنگ ہی وانٹس ٹو اینی بڈی
بٹ دیٹ وڈ بی سوئسائڈل
نہیں
اب آپ ریمبر دیر از سوشل میڈیا اینڈ دی میڈیا انٹرنیشنل میڈیا
تو
اب نو بڈی کین گیٹ اوے ود ڈوئنگ واٹ یو وانٹ ٹو دا پیپل میسز
دے ول گیٹ اوے ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ دا پیپل الاؤ دیم ٹو دیکھیں جی اب سوشل میڈیا کی جنگ ختم ہو گئی ابھی عمران کے جلسے جلوسوں کی بات ختم ہو گئی اب یہ انیویٹیبل کریک ڈاؤن اور کانفرنٹیشن کا
کلیش آ گیا
اب کلیش آ رہا ہے اس کلیش میں جتنی مرضی میں ٹویٹ کر دوں یا جتنی مرضی میں اور آپ پروگرام کر دیں اور جتنی مرضی میں وی لاگ کر لوں کوئی فرق نہیں پڑے گا فرق کیونکہ دا کوئرسو پاور آف دا اسٹیٹ جنرل باجوا کو پتا ہے جنگ جیتی جائے گی آن دا اسٹریٹس آف پاکستان ناٹ آن سوشل میڈیا ہاں ہارٹس اینڈ مائنڈس کی جنگ سوشل میڈیا پہ ہے
لیکن
پاور کی جو جنگ ہے نا رائٹس کی جو جنگ ہے ٹیکنگ پاکستان بیک فرام دی ہینڈز آف دیز لوٹرز اینڈ پلنڈرز اینڈ جنرل ہو ہیز کمیٹڈ ٹریزن اگینسٹ پاکستان بڑے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم فوج کو ڈیوائڈ کرو میں نے کہا بات سنو پاکستانی فوج کو طاقت جنرل باجوا کو طاقت ملتی کہاں سے ہے یہ اگر آئی جی ہوتا یا یہ فیڈرل سیکرٹری ہوتا یا کوئی کاروباری ہوتا یا کوئی ٹی وی اینکر ہوتا یہ کر سکتا تھا جو یہ کر رہا ہے اس کو ملتی ہے طاقت فوج سے بیکاز اس کو پتا ہے کہ فوج کا وہ یونٹی آف کمانڈ ہے میرے خلاف کوئی نہیں جائے گا
وہ کلوریل جو ہے نا ہمارا سیٹ اپ فوج کا اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے لیکن ایک چیز یاد رکھنی چاہیے ٹو اینی ڈکٹیٹر اور اینی وہ ظلم کرنے والا کہ ایک برداشت ہوتی ہے لوگوں کی وہ برداشت جب ختم ہو جاتی ہے لوگوں کی پھر لوگ کہتے ہیں ہمیں پرواہ نہیں اب لوگ جو ہے باشعور ہے دے آر ناٹ اگنورنٹ اینی مور ناؤ پیپل آر اویئر کہ یہ لٹیرے چور لٹیرے کو ہمارے سر پہ انہوں نے مسلط کیا یہ ہمیں قبول نہیں ہے انہوں نے لوٹ کے ہمارا خون چوس لیا ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ کر دیا ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہمیں یہ چور لٹیرے قبول نہیں ہے
اس کا
چاہے باجوا کچھ بھی کہہ لے
اس کا فیصلہ جو ہے نا وہ پاکستان کی سڑکوں پہ ہوگا نہ وہ سپریم کورٹ میں ہوگا بیکاز سپریم کورٹ میں انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا ہے نہ کسی قومی ادارے میں ہوگا بیکاز الیکشن کمیشن ان کے قابو میں آپ دیکھ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں عمران کو ڈسبینڈ کریں ایونچولی فیصلہ ہوگا اگر اسٹیٹ آف پاکستان کوائٹ رہی تو باجوا رہ جائے گا اور باجوا ایکسٹینشن بھی لے گا اور یہ 2 سال اور بھی رہے گا اور یہ حکومت کوئی انٹرم حکومت چلائے گا یا کوئی نئے بھونڈے قسم کے الیکشن کا دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ظلم سہنے کی حد ظلم سہنے کی حد وہ ہے کہ جو جب تک جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہو نا وہ کہتا ہے جی انف
تو آپ سمجھ رہے ایوب خان نے یہ نہیں سوچا تھا یا یعنی یہ نہیں سوچا تھا
10 سال حکومت
وہ ہو لیکن اس کے بعد جب ہو گیا ایک لیول پہنچ گیا ایک لمٹ ختم ہو گئی ایوب خان ضیا یا مشرف ان سب کو پتا ہے کہ پبلک جب ہوتی ہے
ان سب کو نا نکالا ان کے جرنیلوں نے
ہاں
چاروں کے چاروں نے
ظاہر
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو جنرل باجوا کو کوئی اپنا جرنیل نکالے گا ٹھیک ہے جی یا خدا نہ خواستہ کوئی جہاز نہ پھٹ جائے یا اسٹریٹس پہ فیصلہ ہوگا کہ یہ دا پیپل آف پاکستان ول ون یا یہ فاسستی ٹوٹیلیٹیرینزم قسم کی جو आमरियत और ये
नाजी जर्मनी वाला हाल नहीं कर सकते, नहीं
नहीं देखें, बट हो रहा है ना, आप देखें ये
दे आर ट्राइंग, लेकिन हुआ नहीं है। आई डोंट एग्री विद दैट कि हुआ है, नो दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट।
नहीं हुआ तो है,
ही इज ट्राइंग।
ये शबाज गिल को उठा दिया, ये 25 मई को जो हुआ,
ये तो आई एम टेलिंग, अब शबाज गिल को इस्तेमाल करेंगे एज अ पॉन के 25 मई के जो हो गए गिरफ्तारियां उस पर एक्सचेंज के लिए, कि दे आर प्री एम्प्टिंग। आई थिंक दे आर प्री एम्प्टिंग। शबाज गिल क्या है, व्हाट इज शबाज गिल?
नहीं शबाज गिल,
शबाज गिल इज अ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ पीटीआई, बट जहां पर वो दे कैन यूज, जैसे अमेरिका और रशिया के दरमियान होता है कि भाई आपने पकड़ लिया, हमने इनको पकड़ लिया।
देखिए वार्निंग भी होती है ना,
हाँ बट
वार्निंग भी होती है कि देखो शबाज गिल को हमने पकड़ लिया, इमरान रियाज खान को पकड़ा, वार्निंग दी बाकियों को, कुछ चुप कर गए। कल मुझे एक साहब ने खबर दी कि सारे एंकर्स, सारे जो प्रो पीटीआई हैं, वो बहुत डरे हुए हैं। ये मुझे खबर आई,
हाँ तो
डरे हुए हैं,
तो दे आर ह्यूमन बींग्स ना,
ठीक है ना,
तो क्या हो गया?
सो
लेकिन खामोश नहीं हुआ कोई।
सो लेट्स टेक दिस फॉरवर्ड। सवाल यह है कि विल द पीपल ऑफ पाकिस्तान कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स, विल दे, आर दे विलिंग टू टेक, रिसेंट
एग्जांपल है श्रीलंका का,
नहीं मैं पाकिस्तान की बात
नहीं, मैं कह रहा हूं कि भाई एक मिसाल आपके पास है
भाई साहब, मैं
आपके पड़ोस में ही हो चुका है कि लोग आगे
सड़क, हजारों साल हमें हजारों मिसालें मिलेंगी। मेरे आपसे सवाल है, विल द पीपल ऑफ पाकिस्तान कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स इफ दे हैव टू टेक ऑन द स्टेट and the police and the rangers and if need be the army?
Have they not done it in the past? पहले क्या नहीं, माजी में नहीं हो चुका, ये
मैं आपसे
नहीं हो चुका हुआ ना, पहले माजी में भी हो चुका है, उन दिनों में हुआ जब सोशल मीडिया नहीं था, वो अवेयरनेस नहीं थी।
एक दफा मुझे याद है एमआरडी की मूवमेंट थी भुट्टो के खिलाफ, उसमें मैं भी फौज में था बाद में, और मुझे याद है हम छुट्टी में जा रहे थे बलूचिस्तान से, तो आपको पता है छुट्टी पे जो अफसर जाता है वो अपना पर्सनल वेपन कभी नहीं कैरी करता, हम यूनिट में भी नहीं कैरी करते, वो तो सब जगह एक्सरसाइज होती है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम हमें ऑर्डर्स मिले कि आप अपना पर्सनल वेपन कैरी करेंगे छुट्टी पे जाने के लिए, तो वो तो हुआ है। और तीन ब्रिगेडियर्स ने भी रिफ्यूज किया था, ये जब भुट्टो ने मार्शल लॉ लगाया था तीन शहरों में, आई थिंक फैसलाबाद था, लाहौर था और कराची, आई थिंक तीन शहरों में मार्शल लॉ लगाया, और तीनों ब्रिगेडियर इन शहरों में उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। लेकिन ये भी मैं बताऊं, इकबाल साहब वो बड़ी डिफरेंट फौज थी, 1977 की बात कर रहा हूं और ये 2022 है, ठीक है ना, कितने साल हो गए, 40 साल से ज्यादा, बहुत डिफरेंट फौज,
45 साल
मैं उस फौज में था, जर्नैल बड़े हिम्मत वाले थे, बड़ी उनके अंदर स्पाइन थी, बड़ा वो डिफर भी करते थे ऑर्डर जो है सीनियर, लेकिन डिफर भी करते थे। मैंने इस वक्त जो 27 लेफ्टिनेंट जनरल, 200 से ज्यादा या 200 के करीब मेजर जनरल, 600 साढ़े 600 ज्यादा ब्रिगेडियर, आई डोंट थिंक ये इनमें से एक भी शायद ऐसा हो जो हमारे जमाने का जनरल था या ब्रिगेडियर था। यू नो जनरल गुल हसन एज आर्मी CGS एज आर्मी चीफ, वो सिग्नल मेस में बाकी अफसरों के साथ बैठ के नाश्ता करता था।
हाँ, तो ये तो दस्तूर था ना भाई पहले,
और अपनी गाड़ी में बैठ के, टू सीटर थी तो वो खुद चला
गया। हाँ ये दस्तूर था पहले, अभी हमारे हमने बहुत पेम्पर कर लिया इन लोगों को, इनका दिमाग जो है ज्यादा ही कुछ फट गया, ज्यादा वो फैल गया इनकी वो जो है मिसकंसेप्शन कि वी आर अनटचेबल, नोबडी इज अनटचेबल, लेट मी टेल यू दैट, वेदर इट इज बिग बी और स्मॉल जनरल और हुएवर इट इज, एवरीबडी इज अनसरेबल एंड एवरीबडी इज टचेबल।
सवाल आपसे, सवाल सवाल का जवाब,
आवाम जब उठेगी
उठेगी
लाजमी,
यू थिंक
इनफ बहुत हो गया।
अच्छा मेरा ना एक खौफ है, वो खौफ ये है कि ये जो एक्शन क्रैक डाउन कर करके और ये जितना ज्यादा ये इमरान को ब्लैकन करते हैं, डार्कन कर रहे हैं ECP, और जितना ये एक्सटेंड कर रहे हैं ना कि ये लंबा खिंचता जाए, और इन्फ्लेशन ठीक है डबल 100% ज्यादा बिल्स आने शुरू हो गए हैं, उसका इम्पैक्ट अब इंडस्ट्री पे होगा, कीमतें और बढ़ेंगी 100%, तो मेरा ख्याल है कि लोग, मेरा ख्याल है, मुझे खौफ है कि लोग कहेंगे यार बस यार यही तो होता, पाकिस्तान में ऐसे ही होता रहता है, ये होगा होगा कुछ नहीं, और जो मास ज्यादा लोग चाहिए स्ट्रीट पे निकलने के लड़ने के लिए वो नहीं निकलेंगे, थोड़े से लोग निकलेंगे ये झाग बैठ जाएंगे।
नहीं नहीं नहीं, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी द ऑपोजिट।
अच्छा,
हम दोबारा डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। प्लीज स्टे विद अस, थैंक यू।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
कहते हैं कि माया को खींचे माया करकर लंबे हाथ, हैरी सॉन द मेजेस्टिक मॉर्गेजेस के साथ रेजिडेंशियल कमर्शियल मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग आपने करनी है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, सारे बैंकर्स और लेंडर्स के साथ डीप ताल्लुक आता है इनके, आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त दिया जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे। हैरी सॉन जी बड़ी कमाल की तिकड़म लड़ा सकते हैं, बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का अरेंज हो जाएगा। $228 से $1,000 महीना कैसे बचा सकते हैं, कॉल हैरी सॉन Now 6472281000 Harry Sond of Majestic Mortgages।
भाई सस्ता ला ला, इंज कर तू 6 दी बजाय 5 ले ला। ओहो सल्ला भैन जी, कैनेडा आ गए तुसी, इत्थे सब्जियां पिछे बारगेन करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि एशियन फूड सेंटर ते वधिया फ्रेश ग्रोसरी फ्रूट्स दाला सब्जियां सब कुछ बहुत घट कीमत विच मिलदा।
ए है जी एशियन फूड सेंटर, इंडो कैनेडियन ग्रोसरीज, फल फ्रूट दाला सब्जियां दी वन स्टॉप शॉप, नाले साडे कोल इंडिया वाले भांडे प्लेटां बाटियां सब कुछ मिलदा है, साडी सारियां ही लोकेशंस ते सोहणियां सोहणियां रखड़ियां दी बेशुमार वैरायटी भी है। एशियन फूड सेंटर दियां Ontario विच 9 locations विचों जिथे मर्जी आ जाओ।
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही, झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगी आसान। 11 साल से ज्यादा तजर्बा और एक भरोसामंद नाम, हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें। रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस, रिन्यूअल ऑप्शंस, मॉर्गेज डिफिकल्टीज, डाउन पेमेंट इश्यूज, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट फंड्स, सेकेंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से। नंबर टू कॉल 6479235659 6479235659 लाइसेंस नंबर 10530।
दांतों के इलाज के लिए डॉक्टर ने बिल बहुत ज्यादा बता दिया, सोचती हूँ बैक होम जाके दांतों का मुकम्मल इलाज कराऊं।
छोड़ो भाई, किंग बेस्ट स्माइल डेंटिस्ट्री को विजिट कर लो, दांत निकालना हो, क्राउन्स, ब्रिजेस, डेंचर्स, इम्प्लांट्स, बच्चों के दांतों का मुकम्मल इलाज, रूट किनाल ट्रीटमेंट और नए पेशेंट के लिए फ्री इलेक्ट्रिकल टिप ब्रश भी है, कंसल्टेशन इज एब्सोल्युटली फॉर फ्री।
पर जाना कहाँ है?
288 किंग स्ट्रीट वेस्ट हैमिल्टन में 9054090552105540।
अरे भाई हम जानते हैं कुछ चीजों के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता है, जैसे रेड लाइट सिग्नल, बैंक की लाइन और हर रोज वो कॉफी की लाइन, मगर हम करते हैं आपके अपनों के बैंक अकाउंट्स पे मनी ट्रांसफर इन सबसे जल्दी, यानी रिसीव कटी नहीं और मनी ट्रांसफर डन सिर्फ और सिर्फ एबल एक्सप्रेस की रिलायबल सर्विस के साथ। पाकिस्तान में डेडिकेटेड कस्टमर सर्विसेज, हमारी पहचान एबल एक्सप्रेस। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉल नाउ 416-230-4444 एबल एक्सप्रेस।
जीवे 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 पाकिस्तान, जश्न आजादी पाकिस्तान मनाए एक्टिव मार्केटप्लेस के साथ एजेक्स में। संडे 14 अगस्त 10 बजे सुबह से लेके 9 बजे रात तक रंगारंग तकरीबात, मिली नगमे और मजेदार खाने। अपने बूथ या स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल कीजिए 416-230-1906। एक्टिव मार्केटप्लेस, फ्ली मार्केट, 19 नोशन रोड, एजेक्स।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और अभी हमारी बात हो रही थी कि भाई लोग की बर्दाश्त कहाँ तक है, लोग डर जाएंगे। मेरी नज़रों में ये नया जनरेशन है और ये नए जनरेशन में शऊर है, बेवकूफ़ नहीं है, दे आर नॉट ईजिली मिसलेड। और वो डर नहीं है, अब वो डर गई, ख़त्म हो गई। अब लोग बेजार हैं, महंगाई है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें हैं, सब कुछ तबाह हो चुका है मुल्क में, नौकरियां नहीं मिल रही है लोगों की। यानी वो कह रहे हैं कि भाई हम एक वक्त खाना खाएं या गाड़ी में पेट्रोल डलवाएं। अब ये हाल है लोगों का, तो कैन यू इमेजिन कि किसी के साथ ये हो रहा हो वो कितना बर्दाश्त कर सकता है, एक हद है ना, अब खत्म हो गई ये बात मेरे नजरों में. लोग जो है कहे कि इनफ इज इनफ, वी हैव टेकन ऑल दिस नॉनसेंस, ये चोर लुटेरों को हमारे सर पे मुसल्लत किया, वी डू नॉट एक्सेप्ट देम. और उनकी ट्रैक हिस्ट्री है, हर बच्चा जानता है कि इन्होंने क्या हरकत की पाकिस्तान में, इन्होंने कितना लूटा है.
अच्छा, एक थोड़ा सा मैं एक हिस्ट्री में ले जाऊं, रूट कॉज.
हाँ, जरूर, बिल्कुल.
रूट कॉज एनालिसिस कंसल्टिंग में हम करते हैं ना, रूट कॉज एनालिसिस.
और वो सॉर्ट एनालिसिस
सॉर्ट के बाद में पहले रूट कॉज के, जी असल जड़ जो है मसले की वो कहाँ है.
करप्शन.
तो मैं इसके करप्शन भी है तो मैं इसको थोड़ा सा बैक लेके जाता हूँ. अगर मैं पाकिस्तान की तारीख देखता हूँ तो, और उसको फिर यहां लाके जोड़ता हूं, तो पाकिस्तान की तारीख में तीन बहुत बड़े वाकये हुए जिसकी वजह से हम आज आए. एक वाकया कायदे आजम की मौत 48 में और लियाकत अली खान का 1951 में असैसिनेशन, ये पहला वाकया. दूसरा वाकया कि हमारे पास 1956 तक कोई दस्तूर नहीं था. 1947 से लेकर 1956 तक 9 साल कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था. दस्तूर ही नहीं बना.
सही,
ठीक है जी. और तीसरा, गुलाम अहमद ने 1954 में नाजमुद्दीन की हुकूमत को जब निकाला, अयूब को बुलाया, अयूब 4 साल देखा बैठ के कि ये क्या कर रहे
हो रहा है जी,
उसने 58 में मार्शल लॉ लगा दिया. ये तीन चीजें जो है ना, मेरे हिसाब से पाकिस्तान के मसलों का सबसे बड़ा. बिकॉज अगर अयूब ने जब मार्शल लॉ लगाया, और मैं ये थ्योरेटिकल एक बात करता हूं, और लट से वो लगा भी लेता, लेकिन अगर हम जनरल अयूब को अकाउंटेबल ठहराते कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इलीगल था, अयूब खान को ट्राई करते, और लट से मैं थ्योरेटिकली कहता हूं जिस तरह भुट्टो को हैंग किया, अगर अयूब खान साहब को सजाए मौत होती और उनको सजा भी दे दी जाती, तो सवाल आपसे है तो उसके बाद आपका क्या ख्याल है, जनरल आते?
नहीं नहीं, लेकिन एक चीज याद रखिए, एक चीज यू आर फॉरगेटिंग.
हाँ,
अयूब खान नो मैटर व्हाट ही वाज,
एवरीथिंग. अभी बात नहीं कर रहा.
नहीं नहीं, व्हाट आई एम टेलिंग यू व्हाई पीपल फॉरगिव हिम, बिकॉज ही डिड लॉट ऑफ गुड थिंग्स.
मैं आपसे एक थ्योरेटिकल बात कर रहा
हूं. आई एग्री विद यू.
अगर अयूब खान को फांसी दी जाती फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन and doing an illegal act, do you think after that
nobody would have died? I agree.
अब इसको यहां रोक लेते. चूंकि अकाउंटेबल नहीं किया, दूसरा भी आया, उसने तो अयूब खान का अपना बनाया हुआ जो,
तो अयूब खान ने उसको हैंड ओवर कर दिया.
अयूब खान का अपना कॉन्स्टिट्यूशन 62 में जो उसने बनाया, जिसके बाद यह था कि अगर प्रेसिडेंट फॉर एनी रीजन रिजाइन करता है तो पावर जाती है स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली अब्दुल जब्बार खान. उन्होंने उठा के याया गुदी जन्म शरफ आए, ठीक है. अब ये साहब मार्शल लॉ नहीं लगा, लेकिन ऑल इन नेम नहीं है बल्कि मार्शल है. तो सबसे तो पहले ये है कि अब ये वक्त आ गया है. चूंकि मैंने हिस्ट्री का ये बताया है कि नाउ इज द टाइम वी हैव टू मेक एनी वन हु हैज वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन अकाउंटेबल फॉर दिस.
अगर क्लॉज 6,
अगर हमने अयूब खान के खिलाफ आर्टिकल 6 नहीं लगाया,
आर्टिकल 6,
जब भी मौका मिले ना, मैं आपको बता रहा हूं ये ड्रामा म्यूजिकल चेयर चलता रहेगा.
लेकिन
मुझे कंप्लीट करने दे. ये आर्टिकल 6 अगर नहीं लगा ना जनरल बाजवा के खिलाफ फॉर कमिटिंग ट्रीजन, ये ड्रामा चलता जाएगा. पहली बात. दूसरी बात, आपको पता है इंडिया और हमारे में बहुत बड़ा फर्क है, और इस पर लोग मेरे पर बड़ा क्रिटिसाइज करेंगे, मुझे पता है कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है. इंडिया में 1948 में नेहरू बहुत होशियार था, उसको पता था फौज बहुत ताकतवर है, जिस तरह हमारी थी. उसको भी पता था प्रिटोरियंस बैठे हुए हैं, इनको मौका मिला ये शायद मार्शल लॉ लगा रहे. उसने आपको पता है 1948 उनका कॉन्स्टिट्यूशन 1 साल में आ गया. एवरी मिलिट्री पर्सन हैज द राइट टू गो टू ए सिविलियन कोर्ट टू फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस अपने, अगर उनके खिलाफ कोई ऐसी कुछ समझते कि मेरे से नाइंसाफी हुई. फौज के अंदर
जी
वो कोर्ट में जा सकते हैं. उसकी वजह से उनका नायक भी जाता है, सिपाही भी जाता है, जनरल भी जाता है. उनका प्रीवियस आर्मी चीफ जी गया
जी,
वो अपने एज के लिए कि जी मेरी एज 6 महीना कम थी तो मुझे 6 महीने बाद,
कोर्ट ने एक हेयरिंग की, एक सवाल पूछा उनके सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कि जब आप लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट हुए थे वो इस एज में हुए थे या जो आप अभी बता रहे हैं? कहते नहीं जी, पुरानी वाली. उनका देन यू स्टैंड रिटायर्ड एट दिस एज. पाकिस्तान में फौज के अंदर भी इतनी फैसिज्म है कि किसी अफसर को, सिपाही को, जेसीओ को रिकोर्स नहीं है सिविलियन कोर्ट का. ये आर्टिकल 25 आपके कॉन्स्टिट्यूशन की नफी है. आप अपने मुल्क के 7-8 लाख, 10 लाख अफसरों को महरूम नहीं कर सकते फॉर रिकोर्स टू सिविलियन कोर्ट. मैं कहता हूं ये आप ले आए. कल को अगर कोई गलत आदमी करेगा, गलत प्रमोशन होगी, वो जाएगा. लोग कहते हैं जी ये
नाउ लेट्स कम बैक, हाउ डू वी डू इट?
अच्छा, हाउ
यू आर सेइंग ले आए, लाइक हाउ? एक पॉसिबिलिटी ये है कि इमरान खान को मोर देन 2/3 मेजोरिटी मिले. इज एबल टू चेंज ऑल द लॉज रिगार्डिंग आर्मी अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, जुडिशियरी, एवरीथिंग, टोटल रिफॉर्म. वन मोर थिंग वी हैव टू रिमेम्बर, एक मैं मिसाल देता हूं. अब पंजाब में जो इलेक्शंस हुए,
बाय इलेक्शन की बात,
बाय इलेक्शंस जो हुए उसमें रिगिंग नहीं हुई. हुई है रिगिंग, एवरीबडी नोज. दे ट्राइड, इड़ी चोटी का जोर लगा लिया. स्टिल इमरान खान 10 की जगह 15 सीट जीती, करेक्ट?
जी.
सो द स्ट्रगल ऑफ द पीपल मेक्स अ डिफरेंस. मैंने वही कहा कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, बट दे नो दे हैव लर्न द लेसन. दे ट्राइड द लेवल, हर किस्म की रिगिंग की वहां पर पंजाब में. 15 सीट फिर भी ले गया ना, जीत के 16 होती है अगर और थोड़ी वो रिगिंग सक्सेसफुल नहीं होती. एक में सक्सेसफुल ही रिगिंग जहां पर, लेकिन 15 सीटें जीत के ले
गए,
करेक्ट?
सवाल पूछो.
नहीं नहीं, लेट मी फिनिश. अब दूसरी चीज के हमारे जो ये सर पे बिठाया इन्होंने, मुसरत किए हुए लूटर और प्लंडरर्स, ये आप समझते कि पब्लिक विल कंटिन्यू टू टॉलरेट देम? नो
साहब, ये मैं आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा इसमें कहूंगा. ये जो है ना, दीज आर ये हम कह सकते हैं और ये बातें भी कर सकते हैं. मैं आपको बार बार कह रहा हूं, किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है. सबको पता है कि द वास्ट मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तानीज आर अगेंस्ट देम, बट द पावर स्टिल वेस्ट विद जनरल बाजवा एंड
द पपेटियर.
पपेटियर
द बिग बी, यू आर सेइंग द बिग बी.
तो ये पावर वहां से कैसे आएगी? या तो आप लड़ झगड़ के लें, या इनको कोई निकाले और सुप्रीम कोर्ट कोई इमरजेंसी टाइप डिक्लेयर करे और कहे कि जी हालात बहुत खराब हो रहे हैं, हम कहते हैं कि जी इलेक्शन. तो इलेक्शन से अलावा तो कोई हल ही नहीं है. जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, मेरे नजर में मुझे नहीं लगता कि जनरल बाजवा का कोई इरादा है नवंबर में जाने का. खुदा की कसम, अल्लाह मेरे मुंह में खाक कि मेरे मुंह से ऐसे बात निकले. आई डोंट सी दैट गाय.
इरादा नहीं है,
इरादा नहीं है,
नहीं है. दिस इज ऑब्वियस, ऑब्वियस है, इरादा नहीं है.
तो आपका क्या?
पावर इज गॉन टू हिज हेड.
पावर इज गॉन टू हिज हेड. और वो भी बात है कि या तो वो मुल्क से अगर गए तो मुल्क से बाहर रहना पड़ेगा, वो इस मुल्क में रह नहीं सकते. इधर आप जाके देखें ना पिंडी में, ये पुराने
तो सारे जनरल के है ना भाई, बनाए हुए उन्होंने अपने ग्रीन कार्ड.
ये जनरल जब सीएमएच जाते हैं ना रिटायर होने के बाद, इसको नर्सिंग ऑर्डली भी नहीं सलूट करता,
करेक्ट?
ये यूनिफॉर्म उतारते हैं ना
तो खत्म.
तो ये फिरौनियत जो जनरल बाजवा में है कि मेरे पीछे पूरी फौज है जो कि है, और ये यूनिटी ऑफ कमांड का है ना, मैं उसके ऊपर आज बात करना चाहता हूं. ये यूनिटी ऑफ कमांड का जो भाऊ है ना, ये आज हमने क्या भाऊ है? फौज के खिलाफ कुछ ना कहो, अगर फौज टूट गई पाकिस्तान टूट जाएगा. ये हम बचपन से हमारे
बाबा प्रमोट किया ना उन्होंने, ये आपके ISPR ने ये प्रमोट किया है,
और
ये नैरेटिव प्रमोट किया गया.
और अब ये है कि जी एक वाहिद इंस्टीट्यूशन आपका रह गया, अगर आपने उसमें दराड़ें डाली तो पाकिस्तान की सालमियत खतरे में पड़ जाएगी. भाईजान, पाकिस्तान की सालमियत इससे नहीं पड़ेगी कि ये फौज कमजोर हुई. पाकिस्तान की सालमियत कमजोर हुई है बिकॉज हमारी मईशत कमजोर हुई है. हमारे ऊपर लूटर और प्लंडर आए हैं, उन्होंने हमारा लूटा है, हमारे लोगों के हकूक खत्म हुए हैं. एक इदारा 1947 से लेकर 2022 तक देख लें, फौज सबसे ताकतवर, सबसे प्रिविलेज, सबसे जबरदस्त, उसके स्कूल सबसे अच्छे, उसके अस्पताल सबसे अच्छे, उसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस
सबसे अच्छे हैं. बाकी पब्लिक का क्या?
उनके दफ्तर सबसे अच्छे,
बाकी अवाम के पास क्या है?
और पूरा मुल्क गरीब. तो लोग कहते हैं आप फौज के खिलाफ इंस्टिगेट कर रहे हैं. मैंने कहा नहीं यार, ये हमें एक कड़वी बात हमने आज फैसला करके सामने लेके आनी है कि पाकिस्तान आर्मी को काम करना है. दिस आर्मी इज अ नेशनल आर्मी. इट वर्क्स फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान. इट डज नॉट वर्क फॉर वन इंडिविजुअल. कि एक इंडिविजुअल का ये कर दो तो वो कर दो, ये कर दो तो वो कर दो. वो मिसयूज करे, वो अब्यूज करे इस पावर को, वो इस पावर से पूरे मुल्क के फ्यूचर को दांव पे लगा दे. और आप कहें जी यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, ये मजाक है. देखिए यूनिटी ऑफ कमांड का फायदा क्या है जंग में, कि हुक्म मिले तामील करें.
वो सिचुएशन, वॉर सिचुएशन इज
ठीक है. वो कहते हैं जी, तो मैं कहता हूं बिल्कुल होनी चाहिए यूनिटी ऑफ कमांड, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ पाकिस्तान. आप पाकिस्तान को दांव पे लगा दें कि जी हमारी यूनिटी ऑफ कमांड को ना छेड़ो, और मुल्क लुटा जा रहा है,
लोगों को कुचल दो और यूनिटी ऑफ कमांड रहे,
यूनिटी ऑफ कमांड रहे और फौज जो है एक दुल्हन घूंघट लेके.
देखे ना, देखे लोग सर, बोलते, सर, मुझे लोग बोलते ना, लोग बात खत्म करते फौज के खिलाफ कर नहीं रहे.
सर ये खत्म कर दे. फौज एक दुल्हन घूंघट लेके माइयों बैठी हुई है चुप करके, और उसका जो सिपा सलार है वो मुल्क की ऐसी की तैसी कर रहा है. ऐसे यूनिट ऑफ कमांड से हमें कोई नहीं चाहिए.
नहीं होता. लेकिन भाई अब आज ये जमाना जो है, अब क्यों इनको तकलीफ हो रही कि सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ बातें हो रही? हो रही नहीं हो रही? हो रही है. पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, पीपल आर टॉकिंग अगेंस्ट दैट. नाउ दे आर सेइंग कि भाई फौज के खिलाफ साजिश एंड ऑल दिस नॉनसेंस. सब जानते कोई साजिश किसी ने नहीं की. हर पाकिस्तानी मुहिब वतन है, हर पाकिस्तानी चाहता है कि वो पाकिस्तान हमारा बेहतर हो. कोई खिलाफ नहीं है फौज के, आम फौज जो फौजी है सब उसकी इज्जत करते. लेकिन वो नहीं चाहते कि ये इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन हो. एक आदमी जो है पपेटियर बिग बी, वो सबको नचाए और हमारे मुल्क के ऊपर इनको मुसलत करे और हम सबका बेड़ा गर्क करे. नहीं, ये नहीं चाहते लोग. बोले क्या इनफ इज इनफ.
देखिए आपने एक बात पहले कही थी ना कि एक रिफॉर्म क्या आना चाहिए. हमारे पास दो बड़े, बहुत बड़े रिफॉर्म की जरूरत है फौज में. और वाकई आप सही कह रहे हैं, वो इमरान जैसा ही आदमी कर सकता है. नवाज शरीफ के पास सरदारी, ये तो माफिया है, ये तो सियासतदान भी नहीं है. वो रिफॉर्म क्या है कि जो प्रमोशन, ट्रांसफर और पोस्टिंग्स, ब्रिगेडियर टू लेफ्टिनेंट, मेजर जनरल टू मेजर, लेफ्टिनेंट जनरल, ये पावर एक आदमी के हाथ में है, आर्मी चीफ. हालांकि टोकन के तौर पर वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है जो साइन करता है, लेकिन ये बाकी सारी पावर इस आदमी के पास है. कोई ब्रिगेडियर क्यों नहीं करता कि मेरी जो है ना मेजर जनरली चली जाएगी, मेजर जनरली. अब वो बात करूं, अगर दिस गाइज हैड रिकोर्स टू द कोर्ट ऑफ लॉ, और एक ब्रिगेडियर कहता है जी मैं गलत, मुझे पास ओवर किया है, मेरे तो कोर्स भी अच्छे हैं, मेरी एसीआर भी अच्छी है, मेरा सब कुछ अच्छा है, ये दूसरे बंदे को क्यों प्रमोट किया इस तरह. लोग कहते हैं जी हैदर मेहदी तू ये सिविलियन कोड एनआरकी फैलाएगा. मैंने कहा नहीं, मैंने कहा इंडियन आर्मी में सिविलियन कोड एनआरकी है नहीं है,
नहीं है.
लेकिन उधर जनरल मार्शल लॉ नहीं लगाएगा, उसको पता है कि मेरा कोर कमांडर मेरे खिलाफ चला जाएगा
उसका तो वो.
सो वी हैव टू क्रिएट ए बॉडी वेयर बाय दिस प्रमोशन, ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग आर पार्ट ऑफ ए कमेटी. ये मैं तीसरी दफा कह रहा हूं.
Can we come back to another topic?
इकबाल साहब इसको कंप्लीट कर दूं. प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, अ न्यू पोस्ट ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अगले प्रोग्राम में उसकी बात करूंगा, तीनों आर्मी चीफ्स. मेरा ख्याल है कि हमारा जो न्यूक्लियर है वो भी एक फोर स्टार कमांड होनी चाहिए. हमारी जितनी सिविल आर्म फोर्सेज, जिसको रेंजर्स, रेंजर्स, स्काउट्स, एफसी, ये भी एक
यूनिफाइड कमांड,
और इस ये भी फोर स्टार होनी चाहिए. हमारे जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, सिविलियन एंड मिलिट्री, ये भी एक यूनिफाइड कमांड होनी चाहिए. उसका हेड ऑफ इंटेलिजेंस वो भी फोर स्टार हो, और वो मुख्तलिफ लोगों को रिपोर्ट करें, वो आर्मी चीफ को ना करें. आर्म फोर्सेज का जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेज है न्यूक्लियर, वो CDS को रिपोर्ट करें. जो आपकी सिविल आर्म फोर्सेज हैं वो इंटीरियर को रिपोर्ट करें. जो आपकी हेड ऑफ इंटेलिजेंस है वो रिपोर्ट करें डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर. कि ये जो आर्मी चीफ के पास चौधराहट है ना हर चीज के ऊपर,
टोटली टोटल पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी.
और जितने आपकी फौजी फाउंडेशन और ये सिविलियन इदारे इनके पास बिजनेस हैं, दे शुड ऑल मूव फ्रॉम अंडर द आर्मी टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. तब जाके एक्विटी आएगी. और ये 8-10 साल लगेंगे इस जिन को काबू करने
में ओवरनाइट तो कोई ओवरनाइट
सॉरी मैजिक यू वांटेड टू मूव टू
अनदर नहीं भाई ये स्वात में जो हुआ है
जी जी जी
इज इट अ डाइवर्शनरी टैक्टिक बाय द आर्मी कि अपनी या आई डोंट नो क्योंकि वो इज इट बिकॉज मे बी और एक वजह हो सकती कि अफगानिस्तान में उन पे अटैक्स हो रहे अब दे आर बीइंग किल्ड लाइक अब कल भी हुआ वो
अच्छा चलिए इसको थोड़ा
आपके वो
आपको पता है ना कि पिछले 3 महीने से तालिबान से नेगोशिएशंस चल रही हैं हमारी
टीटीपी
से 3 मंथ्स आफ्टर दे रिमूव्ड इमरान नॉट बिफोर शायद उससे पहले
भी उससे पहले भी थी
तो बट इमरान वाज नॉट इन फेवर ऑफ दिस काइंड ऑफ नेगोशिएशन दैट आई नो अब वो चल रही है अब वो क्या नेगोशिएशन थी हमें नहीं पता वो मांग रहे थे कुछ बंदे उनके रिलीज करो गुड फेथ तहरीक तालिबान पाकिस्तान हैज नेवर बीन honest about negotiating with the Pakistan army.
No, there niyat nahi hai unki.
Un jab pehle bhi karte the 3-4 core commander se unhone ki wo sirf unhone time buy kiya tha regroup karne ke liye uske baad wo attack
ji dobara ji
main jab is tarah hui maine kaha koi unke niyat nahi hai agar general bajwa sahab ke zehen mein koi aisi koi ek chaal hai ki ji wo tehreek e taliban pakistan ko disarm karwayenge falana wo bahut badi galtfehmi unki hai ye kabhi bhi aise nahi karenge ye apne log nikalwayenge छुड़वाएंगे उसके बाद ये वापस अपनी वही हरकतें करेंगे
दहशतगर्दी पे शुरू है दोबारा
तो एक तो ये हिस्ट्री आप देखें अब कल खबरें आई हैं कि स्वात के अंदर आपको तालिबान ओपनली गश्त करते हुए नजर आए हैं अब ये क्यों आए हैं और इनको किसने इजाजत दी एक पुराने प्लान था कि स्वात एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर होगा उसके अंदर एक यूनिट होगी दो यूनिट एक मलाकंड में होगी बटालियन एक यहां होगी एक आगे होगी कि यहां वो ना आ सके वो नहीं हुआ यहां सिर्फ एफसी है इस वक्त तो दे हैव ओपन रन ऑफ द प्लेस जहां तक आप कह रहे हैं कि जी ये डाइवर्जनरी टैक्टिक है बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर है
नॉट गवर्नमेंट बाय बिग बी
बाय जनरल बाजवा तो मैं नहीं समझता क्योंकि मैं जनरल बाजवा को बहुत बुरा जरूर कहूंगा लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि वो इतनी बड़ी पाकिस्तान के साथ इतनी बड़ा जुल्म करेंगे कि उन्होंने तालिबान को इधर लाए और अपने लिए अगर है तो देन देर इज नॉट इवन ए बिगर ट्रेटर देन हिम अगर उन्होंने की क्योंकि मेरा ख्याल है नहीं मेरा ख्याल है कि हम कमजोर हो गए वहां के जो इंटेलिजेंस
हमारा फोकस हट गया
हमारा फोकस हट गया रिजीम चेंज पे ये सारा इंटेलिजेंस भी सब उधर चली गई सारी चीजें उधर चली गई
फोकस वो अंदर घुस गए
वो अंदर से घुस गए दिस इज
पॉसिबल
बट दिस इज वेरी सीरियस
हाँ इट इज एक्सट्रीमली सीरियस वेरी वेरी सीरियस चलिए ऐसे भी वक्त खत्म हो रहा है वी हैव टू कंक्लूड तो इंशाल्लाह नाजरीन दोबारा हाजिर हो गए विद एपिसोड 4 एनालिसिस का शुक्रिया आपका फॉर टॉलरेटिंग अस अस्सलाम वालेकुम
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो
यूके स्विट्जरलैंड इटली तो बाद खालिस्तान रेफरेंडम दियां वोटां दा अगला पड़ा कैनेडा कैनेडा विच खालिस्तान रेफरेंडम दियां वोटां दा पहला सेंटर 18 सितंबर दिन एतवार नूं टोरंटो विच लगेगा वोटिंग सेंटर दी लोकेशन जानने लई जां होर जानकारी लैण लई संपर्क करो 437-423-2669 या 437-423-2666
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जा ऑटोमैटिक क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं ड्राइव थ्रू फैसिलिटी एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप 519-622-0660 या quicktrucklube.com QTL बिकॉज़ वी केयर
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है
ओ फिर बने भी क्यों ना क्योंकि बेडरूम सेट सोफा सेट मैट्रेसेस डाइनिंग टेबल डेकोरेटिव आइटम्स गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747471
ਡਾਈਵੋਰਸ ਜਾਂ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਸਟਡੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਦੌਲਤ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ।
SNS ਲੋਅਰਸ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ